दिन भर 1 अगस्त बृहस्पतिवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़े हर मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया। मुख्य अभियुक्त विधायक कुलदीप सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। पीड़िता की मां ने चिंता जताई।
अभी तो अंदर हैं, बैठे बैठे इतना करा रहे हैं और जब मैडम हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तभी हमको परेशान करेंगे, छोड़ेंगे तो लड़ाई बहुत भारी है, क्या न्याय मिलेगी हमको तो कुछ भरोसा नहीं है।
अमरीकी मीडिया का दावा, ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की हवाई हमले में मौत।
US ally, either Pakistan or Saudi Arabia, might have carried out the operation.
कार्यक्रम में शामिल होंगे श्रोताओं के खत भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत में सत्ताधारी बीजेपी ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निष्कासित कर दिया है। ये फैसला उस कार दुर्घटना के बाद दिया गया है जिसमें विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला घायल हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामले की सुनवाई रोजाना हो और इसे 45 दिनों में पूरा किया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो शुक्रवार को पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा। पाकिस्तान ने ये कदम नीदरलैंड्स की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें उससे कहा गया था कि वो मौत की सजा पाए जाधव को तुरंत राजनयिक मदद मुहैया कराए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को जाधव को राजनयिक मदद की पेशकश की है।
पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास प्रपोजल आया है उसको हम अभी इवेलुएट कर रहे हैं, उस प्रपोजल को, और इवेलुएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट था उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो होगा हम पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक चैनल है उसके थ्रू हम उनको इसका जवाब देंगे।
ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। रवांडा ने कांगो गणराज्य से लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है। दरअसल कांगो प्रशासन इबोला के प्रकोप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा जिसके बाद रवांडा ने कांगो के भीड़भाड़ वाले शहर गोमा से लगने वाली अपनी सीमा को सील कर दिया है। एक साल में इस बीमारी से 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गोमा में भी तीसरा मामला सामने आया है। एक ब्रिटिश चैरिटी ऑक्सफेम के अधिकारी तांबा इमैनुअल ने बीबीसी से बातचीत में इस मामले पर चिंता जताई।
We echo the WHO's call for authorities to allow borders to remain open.
हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान को दोहराएंगे कि सरकारें सीमाओं को खुला रखें ताकि लोग आधिकारिक पॉइंट से उन्हें सुरक्षित पार कर सकें। इन पॉइंट्स पर इबोला को लेकर उनकी स्क्रीनिंग तो होती ही है। अगर सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा तो खतरा रहेगा कि लोग गैर कानूनी तरीके से सीमाएं पार करेंगे। लाखों लोग सीमा पार से होने वाले व्यापार पर निर्भर हैं। ये थे ब्रिटिश चैरिटी ऑक्सफैम के एक अधिकारी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में हुती विद्रोहियों ने एक सैन्य शिविर में एक परेड पर हमला किया। ये सैन्य शिविर एडन शहर के पास है। हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हुती के सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हांगकांग में कई हफ्तों से जारी प्रदर्शनों के बाद चीनी सेना ने एक पब्लिसिटी वीडियो जारी किया है जिसमें वो शक्ति प्रदर्शन करती दिख रही है। ये वीडियो हांगकांग में ही स्थित एक चीनी सैन्य अड्डे का है। इस वीडियो में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को टैंक चलाते हुए, बम लगाते हुए और दंगा विरोधी ड्रिल करते हुए देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को एक चेतावनी है। सूडान की सेना का कहना है कि सोमवार को छात्रों पर हुई गोलीबारी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गोलीबारी में 4 छात्रों के साथ 2 अन्य लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। सरकारी मीडिया ने सेना के हवाले से कहा है कि गोलीबारी करने वाले लोग एक बैंक में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे और इन पर अब मुकदमा चलाया जाएगा। नीदरलैंड्स में बुर्का या नकाब पहनने पर लगाई गई रोक लागू हो गई है। हालांकि कई सरकारी इकाइयों ने इन्हें लागू करने से इनकार कर दिया है। नीदरलैंड्स में अब सार्वजनिक इमारतों में पूरा चेहरा ढक देने वाला इस्लामिक पर्दा करने की मनाही होगी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। बहुचर्चित उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ा रुख दिखाते हुए इस केस से जुड़े हर मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि इस मामले की जांच तेजी से की जाए। कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
किसी केस को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की एक अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी। साल 2003 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई को तमिलनाडु से बेंगलुरु की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख नकली मुठभेड़ मामले को गुजरात से मुंबई भेज दिया था। जानकारों के मुताबिक सुनवाई को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने के ऐसे मामलों में कारण स्वतंत्र और न्यायपूर्ण सुनवाई का न हो पाना बताया जाता है और इस कदम का मकसद होता है न्याय के प्रति लोगों में विश्वास कायम करना। लेकिन उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे अदालत के फैसले को सनसनी फैलाने वाला कदम मानते हैं। वकील कामनी जायसवाल इसे बहुत देर से लिया गया छोटा कदम बताती हैं। वकील दुष्यंत दवे के अनुसार जिन मामलों में ताकतवर राजनेता अभियुक्त होते हैं वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी पहुंच हर जगह होती है। वो कहते हैं हमारा सिस्टम पूरी तरह प्रभावहीन और सुस्त है। लेकिन कामनी जायसवाल इससे सहमत नहीं और वो नीतीश कटारा हत्याकांड में डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके चचेरे भाई को दोषी करार दिए जाने का हवाला देती हैं। साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को 30-30 साल की सजा सुनाई थी।
डीपी यादव वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन यूपी। ही वाज अ हिस्ट्री शीटर, ही वाज एन एमएलए, ही वाज अ लिकर बैरन। उनके केसेस हम लोग ने ट्रांसफर कराए थे दिल्ली। इट वाज ओनली बिकॉज़ इट केम टू दिल्ली दैट अल्टीमेटली द कन्विक्शन हैपेंड।
लेकिन वकील दुष्यंत दवे के मुताबिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के अपने नुकसान हैं।
हाउ विल द विटनेसेस ट्रैवल फ्रॉम दैट पुअर विलेज? दे आर वेरी पुअर पीपल। हाउ आर दे गोइंग टू ट्रैवल हियर?
दुष्यंत दवे कह रहे थे आप बताइए कि इस मामले में कैसे गवाह गरीब इलाकों से दिल्ली आकर गवाही देंगे? पीड़िता का परिवार दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में कैसे रहेगा? पीड़िता का परिवार दिल्ली में कब तक रहेगा? सरकार ने उन्हें कोई घर देने का तो प्रावधान किया नहीं है। मामले का स्थानांतरण करना आसान है लेकिन इसके गहरे परिणाम होते हैं। ये थे दुष्यंत दवे।
It would have been better if Supreme Court had requested on administrative side.
दुष्यंत दवे कह रहे थे बेहतर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निवेदन करता कि वो एक जज को नियुक्त करें और उन्हें हर दिन मामले की सुनवाई करने को कहें और पुलिस परिवार सभी गवाहों को पूरी सुरक्षा देने के अलावा पूरा मुआवजा दे, ये और अच्छा होता। आप छोटे गांव से लोगों को हटा नहीं सकते। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के शब्द। गुजरात से मामलों के मुंबई स्थानांतरण की उन्नाव मामले से तुलना करते हुए दुष्यंत दवे कहते हैं कि वहां अभियुक्त गुजरात पुलिस के अफसर और राजनीतिज्ञ थे लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। कुलदीप सेंगर चाहें तो इसे गैर संवैधानिक कहकर आपत्ति जता सकते हैं। उधर कामनी जायसवाल की नाराजगी पीड़िता के परिवार की सुप्रीम कोर्ट को लिखी हुई चिट्ठी पर प्रतिक्रिया में कथित देरी से है।
ये चिट्ठी भी 17 जुलाई से पड़ी हुई है मुझे और इसमें जो चिट्ठी में जो कुछ लिखा है इतना सीरियस मैटर था कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द चीफ जस्टिस।
उधर सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी के सहयोगी संवाददाता सुचित्र मोहंती के मुताबिक जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से पूछा कि ये चिट्ठी 17 जुलाई से 30 जुलाई तक क्यों पीआईएल सेक्शन में रखी रही तो जवाब आया कि उच्चतम न्यायालय के पास हर महीने 5,000 से 6,000 चिट्ठियां आती हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में पीड़ित लड़की का इलाज चल रहा है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य अभियुक्त विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पीड़ित लड़की की सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से समीरात मजमिश्र की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी उन्नाव मामले में अचानक तेजी दिखाने लगे। कल तक उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक और मामले के मुख्य अभियुक्त कुलदीप सिंह सेंगर के निलंबन की खबरों तक पर रहस्य बना हुआ था, लेकिन आज उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हालांकि इस बारे में स्पष्ट जानकारी देने को पार्टी के नेता अभी भी तैयार नहीं हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित करने की मांग न सिर्फ राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया में आम लोग तक कर रहे थे, बल्कि पार्टी के भीतर भी परोक्ष रूप से इसकी उम्मीद जताई जा रही थी। कल ही यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीबीसी से बातचीत में कहा था,
किसी भी विधायक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस पर किसी प्रकार के कोई आरोप लगे हैं या कोई चार्जशीट लगी है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नैतिक आधार पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत के रेल मंत्री इस बात के लिए इस्तीफा दे देते थे कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी, पूरी पॉलिटिक्स और सबके लिए आज एक विचारणीय प्रश्न है कि मोरालिटी का ग्राउंड कहाँ है।
हालांकि कल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह को जब अचानक दिल्ली बुलाया गया तो ये कयास लगाए गए कि शायद कुलदीप सेंगर पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर का निष्कासन ही नहीं बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए। पीड़ित परिवार से मिलने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू का कहना था,
केवल उनको पार्टी से बर्खास्त कर देना ही हमारा मकसद नहीं, पीड़िता को न्याय मिले और सिर्फ ये कार्रवाई बर्खास्तगी तक ही मात्र समाप्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनकी सदस्यता को भी निष्कासित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए सदन की सदस्यता से। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, वह पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि पूरी घटना में इन्वॉल्व रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है।
इस बीच पीड़ित लड़की की सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। राज्य के DGP OP सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि की।
सुरक्षा की जो कोताही हुई है उसकी व्यापक जांच की जा रही है, लेकिन उसकी प्रत्याशा में हमने वो 3 सुरक्षाकर्मी जो पीड़िता के साथ लगाए गए थे उनको हमने निलंबित कर दिया।
इस बीच लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में पीड़ित लड़की की हालत तभी भी नाजुक बनी हुई है, हालांकि उनके वकील की हालत में अब सुधार हो रहा है। ऐसी खबरें भी थीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शायद पीड़ित लड़की को दिल्ली के किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बौथम ने कहा कि लड़की के इलाज में लगे डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल यहां से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है।
मैं डॉक्टर JP सिंह जी से बात हुई, जो यूपी में अपना जी से बात हुई, मैं उनको देख रहे हैं इस पूरे केस को, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात हुआ, मेडिकल के डॉक्टरों से बात हो गई है पूरी, जो इलाज वहाँ है वो इलाज हम यहाँ दे रहे हैं, तो इसलिए शिफ्ट करने का अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।
हालांकि अस्पताल सूत्रों के हवाले से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद लड़की को बेहतर इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में जल्द ही शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहां उसकी स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उन्नाव रेप केस की पीड़िता का परिवार एक के बाद एक कई झटके लगने से गहरे सदमे में है। पीड़िता का मां का कहना है कि पूरा परिवार एक तरह से बिखर गया है और उनकी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी कभी कभी भरपाई नहीं हो सकती। लखनऊ में पीड़िता की मां से बात की BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने।
बेटी की तबीयत कैसी है अभी, क्या देखते हैं?
बेटी की तबीयत, हम परसों थे नहीं बेटी को देखे हैं, कहते हैं जाओ जाओ जाओ, अभी नहीं दिखाएंगे।
और जब देखी थी तो कैसी लग रही थी?
देखेंगे तब, तभी वो ऐसी ही लगती थी, आंखी नहीं खुली थी, ना बात नहीं करती, तो क्या जाने ठीक होगी नहीं ठीक होगी, हाँ कहूँ भरोसा भगवान जाने।
आपका कभी मन ये किया कि इस सब में पढ़ते ही नहीं, ये सब शिकायत करते ही नहीं?
तो अभी तो अंदर हैं, बैठे बैठे इतना करा रहे हैं, और जब मैडम हम इनते लड़ाई नहीं लड़ेंगे तभी हमको परेशान करेंगे का छोड़ेंगे, तो लड़ाई बहुत ही भारी है, क्या न्याय मिलेगी हमको, तो कुछ भरोसा नहीं है। मेरे जेठ को ही मरवा दिया, मेरे पति को मरवा दिया, मेरे घर में कोई नहीं, खाली छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हैं, ये है, मेरे घर में कोई खर्चा संभालने वाला नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे।
आपकी बेटी ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह करने
सब लोग हमारी बेटी कह लग, चलो हम चलते हिम्मत बांधते हैं, हम आप हत्या कर लेंगे, सब पूरा परिवार मर जाएंगे, जब मेरे कोई कमाने खवाने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे दुनिया में।
तब आपने उसे रोका?
नहीं, फिर तो हमने नहीं रोका, जब तुम, हम कहा चलो जब तुम मर जाओगे तो सब लोग मर जाएंगे साथ में, क्या करोगे।
एक बार जब सेंगर की गिरफ्तारी हो गई, कुलदीप सेंगर की, तो कुछ आप लोगों को आराम मिला उसके बाद?
आराम क्या मिला सर, मैडम आज तक का तो उनके जेल के अंदर थे, उसके अंदर फ़ोन था और बात भी होती थी। और देखो मेरा पति मर गया, ऊपर चला गया भगवान के ऊपर। वो हम उनके तो बीवी बच्चे लड़के बच्चे दुनिया परिवार मातम नेता नगरी सब मिल जाएगी, और हमारे पूछो ना बच्चे मिल पाएंगे ना हम मिल पाएंगे, कोई नहीं मिल पाएगा। वो तो चले गए भगवान के ऊपर, वापस होके नहीं आएंगे नीचे। हमेशा डर रहता है मैडम, पर हम लोग कहते हैं चलो मार देंगे तो मार देंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, दुकान नहीं जाएंगे, चीज़ नहीं लाएंगे कि पिसाएंगे नहीं कि खाएंगे नहीं, पानी नहीं लाएंगे, सब चीज़ तो लाएंगे मैडम, है कब तक का डराएंगे इनको, मार देंगे तो मार देंगे, जब इतने लोग मार डाले तो हम लोगों को मार देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
ये थी उन्नाव रेप केस की पीड़िता की माँ, उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। झारखंड की पुलिस ने 3 साल की एक बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अभियुक्तों ने इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया उसकी जानकारी सामने आने के बाद शहर के लोग सकते में हैं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
तारीख थी 25 जुलाई, रात के 11:30 बज रहे थे। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपनी 3 साल की बेटी और पुरुष मित्र के साथ सोई थी। तभी काली और सफ़ेद कमीज पहने आए 2 लोगों में से एक ने उनकी नींद का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची को गोद में उठा लिया। वे उसे लेकर दूसरे दरवाजे से निकल गए। बाद में उस बच्चे की सिरकटी लाश मिली। अब दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। जमशेदपुर के रेल एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारीव ने बीबीसी से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं। उनके खिलाफ बच्चे के अपहरण और सेक्सुअल अपराध के मामले पहले से दर्ज हैं। वे हाल ही में जेल से छूटे थे। गिरफ्तार युवकों में एक की माँ झारखंड पुलिस की कांस्टेबल है, वहीं दूसरे अभियुक्त के पिता सीआरपीएफ जवान है, वे अभी पुलवामा में प्रतिनियुक्त हैं। इधर मृत बच्चे के घर वालों ने कल जमशेदपुर के साक्षी कब्रिस्तान में उसे अंतिम विदाई दी। इस घटना से पूरा शहर सदमे में है। मृत बच्चे के मामा अफसर ने बीबीसी को बताया,
शादी हो गया था और मतलब बच्चा जब 3 महीने का था उस टाइम उससे तलाक हो गया था। अपना घर में हम लोग पाल पोसते बच्चा को बड़ा के हम लोग।
एक सप्ताह के दौरान झारखंड में गैंग रेप और रेप की कम से कम 5 घटनाएं हुई हैं। इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रघुवर दास की सरकार बेटी बहनों को सुरक्षा देने में विफल रही है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
और अब रुख मध्य प्रदेश की राजधानी संस्कारधानी का, यानी कि जबलपुर का, जहां एक व्यक्ति ने जोमेटो का ऑर्डर इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय मुसलमान था। सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने इस मामले में दखल देने की बात कही। वहीं ऑर्डर कैंसिल करने वाला व्यक्ति जो है उन्होंने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया है। ज्यादा जानकारी भोपाल से शुर नियाजी की रिपोर्ट में।
पंडित अमित शुक्ला नाम के ग्राहक ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय से खाना सिर्फ उसके मजहब की वजह से लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब जबलपुर पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने इस मामले में अपनी तरफ से ही नोटिस देने का फैसला किया है, जबकि इसके खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। यह नोटिस उस व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से दिया जाएगा। फैयाज खान नाम का डिलीवरी बॉय अब इस मामले को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता है। फैयाज खान ने कहा कि उसे पहले कभी भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना नहीं पड़ा है।
सर, मैं जोमेटो का डिलीवरी बॉय हूँ। रूपाली रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया था और उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि ऑर्डर आपके पास में है क्या। फिर मैंने उनको कंफर्म करने के लिए फ़ोन लगाया कि आपका ये ऑर्डर है, तो उन्होंने मुझसे साफ ना ही कर दिया कि ये मतलब आपका ऑर्डर नहीं हो सकता है। सर, कि मैं मतलब मुसलमान हूँ, मेरा नाम फैयाज खान आ रहा हो, तो हो सकता है इस वजह से कुछ उनको तकलीफ हो।
वहीं अमित शुक्ला, जिन्होंने इस ऑर्डर को सिर्फ इसलिए कैंसिल किया था कि वह डिलीवरी गैर हिंदू से करवाई जा रही थी, ने कहा कि उन्होंने ट्वीट जोमेटो की कस्टमर सर्विस को लेकर किया था, लेकिन उसे अलग ही रंग दे दिया गया।
तो ये मेनली जोमेटो की कस्टमर सर्विस को लेकर के एक इशू था। इसमें ऐसा कोई वो बहुत बड़ा रिलीजियस या इस टाइप का एंगल नहीं था। अब वो उसके बाद ट्विटर पे एक सर्टेन सेक्शन है, उसने इसको दूसरा रंग देना शुरू कर दिया और दूसरे डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। वो एक लॉबी है, एक सेकुलर लिबरल कई किस्म की लॉबी है, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, उनको इंटॉलरेंस दिख रही है, कई सालों से दिख रही है। अभी भी चिट्ठी लिखी 49 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, वो एक सेक्टर है, वो करता रहता है इस टाइप की कोशिशें, जरा से मुद्दा मिलता है वो उछालते हैं उसको। मामला ये था कि हमारा श्रावण का महीना चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति डिलीवर करे जो आस्था को समझता हो हमारी।
वहीं रूपाली रेस्टोरेंट के मालिक संतोष पॉल ने इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया है।
21वीं सदी का भारत और उस भारत में रहने वाले हम पढ़े लिखे लोग जो टेलीफोन मोबाइल्स का उपयोग करते हैं और इस तरीके की इंटरनेट का ज़माना है और हमारी मानसिकता आज वो हिंदू मुस्लिम पर अटकी हुई है, ये बड़े दुख का विषय है। हम चांद में जा रहे हैं, ये हमें कहाँ पे ले जा रहे हैं, ये जो विकृति है, ये मानसिक विकृति है ये।
अमित शुक्ला अपने आप को आरएसएस का करीबी बताते हैं और ट्विटर पर उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी फॉलो करते रहे हैं, लेकिन इस मामले के सामने आ जाने के बाद से उनका ट्विटर अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अलकायदा के पूर्व नेता ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन एक हवाई हमले में मारे गए हैं। इस खबर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हमजा की मौत से अलकायदा को वाकई बड़ा झटका लगेगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
अमरीकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत हो चुकी है। हालांकि इस दावे में अमरीका ने कोई और जानकारी नहीं दी है कि मौत कब और कैसे हुई। इसकी खबर एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। इसी साल फरवरी में अमरीकी सरकार ने हमजा का पता बताने वाले को 10 लाख अमरीकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अमरीकी रक्षा मुख्यालय ने हमजा की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मध्य पूर्व की राजनीति को समझने वाले प्रोफेसर फवाज इसकी संभावित वजह बताते हैं।
US ally, either Pakistan or Saudi Arabia, might have carried out the operation.
हो सकता है कि अमेरिका के सहयोगी पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब ने ऐसा कोई ऑपरेशन किया हो। ये घटना पाकिस्तान से लगती अफगान सीमा या फिर यमन से लगी सऊदी सीमा की हो सकती है। इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया गया होगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी जल्दबाजी में उसके सहयोगियों का नाम आए, लेकिन देर सवेर अमरीकी सरकार इसकी घोषणा कर देगी। ये थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मध्य पूर्व की राजनीति को समझने वाले प्रोफेसर फवाज। हमजा बिन लादेन की उम्र 30 साल के आसपास है। जिहादी के तौर पर उनका नाम चर्चा में आया जब अगस्त 2015 में उनका एक ऑडियो संदेश सामने आया जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों पर हमले का आह्वान किया था। साल 2016 और 2017 में अलकायदा के बैनर के साथ उनके 11 और संदेश आए। उनके सामने आने को अलकायदा में ओसामा बिन लादेन की विरासत को संभालने के रूप में देखा गया। ऐसा भी माना गया कि ये चरमपंथी ग्रुप युवा बिन लादेन को अलकायदा का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार कर रहा है। हमजा के अधिकांश ऑडियो संदेशों में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पश्चिम पर हमले से लेकर सऊदी अरब में सत्ताधारी अल सऊद परिवार को उखाड़ फेंकने और फलस्तीनी इलाके और सीरिया में जिहाद छेड़ने का आह्वान शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हमजा बिन लादेन की मौत की खबर आई है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन उनकी कभी पुष्टि नहीं हुई। इस बार भी अमरीका की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। और अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे
जी।
पीले पोस्ट कार्ड की तरफ सबसे पहले चलते हैं और ये पहला पोस्ट कार्ड भेजा है अशोक कुमार ठाकुर ने, जो अदलपुर दरभंगा बिहार से लिखते हैं और ये कह रहे हैं कि 24 जुलाई को रेडियो में बीबीसी की संध्याकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रम दुनिया जहां में अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के बारे में जो जानकारी दी गई वह आश्चर्यजनक और भयभीत करने वाली थी और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी कोई युद्ध या लड़ाई हो।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो तनाव है वो युद्ध में न बदले, यही सबके हित में होगा। लेकिन तनाव जो है दुनिया के कई कोनों में काफ़ी गंभीर हालत में है और हम कोशिश करते हैं कि आपको उनकी पूरी ताज़ा जानकारी मिल सके।
फिलहाल तो राजेश जी यहाँ पर तनाव ले रहे हैं ज़िला रामपुर से असद अली, जो उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। उनका ये कहना है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब पोस्ट कार्ड जो है वो टोकरियों में डाल दिए जाते हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं है। ईमेल ज़्यादातर शामिल किए जाते हैं और मेरी यही शिकायत है और मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप खत ज़्यादा लें और ईमेल कम लें।
आपका बहुत शुक्रिया पत्र लिखने के लिए, और बिल्कुल चिंता न करें, जैसा कि अभी अभी सूर्यांशी ने ये साबित किया कि पोस्ट कार्ड पढ़े जाते हैं। आमतौर पर हम कार्यक्रम की शुरुआत चिट्ठियों से करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ये चिट्ठियाँ दूर दराज के इलाकों से आती हैं, ये चिट्ठियाँ वो लोग लिखते हैं जो अभी भी इंटरनेट से उस तरह से कनेक्टेड नहीं हैं जैसे ईमेल लिखने वाले हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे दोनों तरह के श्रोता, जो ईमेल लिखते हैं वो भी और पोस्ट कार्ड लिखते हैं वो भी, दोनों को मौका मिले। लेकिन हम जो पत्र लिखते हैं उनको ज़रूर तरजीह देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे भी उनकी चिट्ठियों को हम तक पहुंचने में ईमेल के मुकाबले वक्त लगता है।
और राजेश जी की ये बात सुनकर मुझे लगता है असद अली जी के चेहरे पर मुस्कान तो आई गई होगी।
कोशिश तो हमारी यही है कि हमारे श्रोता खुश रहें, मुस्कुराते रहें। असद अली जी ने भेजा है हमें ये पत्र रामपुर से, जो वैसे दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। जी
आगे बढ़े तो लक्ष्मण दास शर्मा मंडलाना नारनौल से लिखते हैं, और इन्होंने कविता के तौर पर रेहान फजल जी की तारीफ में लिखा है, जिसके हर विवेचना सफल वे हैं श्री रेहान फजल। कारगिल पर उनकी तीसरी कड़ी विक्रम बत्रा की विजय सबसे बड़ी, 26 जुलाई को कमाल कर दिया, भारतीयों का दिल शौर्य से भर दिया।
ये नियमित श्रोता हैं नारनौल के लक्ष्मण दास जी, और ये अक्सर कविताओं में अपनी बात कहते हैं। जी
आगे अगर बढ़े तो अब ईमेल पर नज़र डालते हैं, और सबसे पहला ईमेल यहाँ पर हैदर रज़ा खान का है, जो ज़िला आजमगढ़ से लिखते हैं उत्तर प्रदेश, और ये कहते हैं कि आपको कई बार मैंने पत्र लिखा पर आपने शामिल नहीं किया। खैर, ये मेरी एक कोशिश ज़रूर है कि फिर से मैं लिख रहा हूँ। और ये लिखते हैं कि 1 अगस्त के नमस्कार भारत सुना, जिसमें दुनिया जहाँ में संदीप सोनी की प्रस्तुति सुनी जो बहुत ज्ञानवर्धक रही। खेल समाचार सुनाने में आदेश कुमार का कोई सानिय नहीं है, लेकिन सूर्यांशी पांडे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। ये तो मेरी तारीफ हो गई।
जी लिखा है इन्होंने पत्र, और बहुत सारे लोगों की तारीफ की है। जिन जिन तक तारीफ हमें पहुंचानी है आपने की है, हम पहुंचा देंगे। और सूर्यांशी तो हमारे सामने बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। अगला पत्र लीजिए, कोई शिकायत भी हो तो वो भी बताइए।
आज वैसे राजेश जी कोई शिकायत आई नहीं है, ज्यादातर तारीफ ही आई है। कुछ दरख्वास्त हैं वो आई है, वो हम आगे हम बात करेंगे। महेंद्र सहारन जो है श्री गंगानगर राजस्थान से लिखते हैं, और ये कहते हैं कि नमस्कार भारत, और दिन भर की शुरुआत में प्रस्तुत किए जाने वाले विश्व समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्भित होते हैं, और 3-4 मिनट में ही पूरी दुनिया की हर महत्वपूर्ण जानकारी समेटने के लिए गुरप्रीत सैनी, भूमिका राय और अन्य का आभार।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए, हमें ईमेल भेजने के लिए। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और श्रोताओं की चिट्ठियों के बाद खेल समाचारों के लिए इंदु पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं। इंदु जी, खेल के मैदान आपके हवाले।
जी, एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, एडबेस्टन बर्मिंगहम में आज शुरुआत हुई इसकी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट पे 136 रन बना चुका है। विश्व कप में जीत के बाद इंग्लैंड एशेज सीरीज भी जीतना जरूर चाहेगा, क्योंकि ये उसके लिए दोहरी सफलता होगी। और बात करते हैं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और साइना नेहवाल की, जिन्होंने विश्व बैडमिंटन महासंघ की जो नई रैंकिंग है उसमें 5वें और 8वें स्थान पर अपनी जो सीट है उसे पक्की रखी है। और थाईलैंड ओपन में साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप बाहर हो गए हैं।
और आपने गागर में सागर भर दिया। खेल समाचारों में इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। भारत में सत्ताधारी BJP ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निष्कासित कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ बलात्कार से जुड़े मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो शुक्रवार को पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा। रवांडा ने कांगो गणराज्य से लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है। कांगो प्रशासन ने बोला कि प्रकोप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिसके बाद रवांडा ने कांगो के भीड़भाड़ वाले शहर गोमा से लगने वाली अपनी सीमा को सील कर दिया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।